चमन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। बनके इस जहान में महकोगे फूल बनके इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो,
तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो।
शांति। महाभारत में सर्व तरफ से घिरा हुआ और फंसा हुआ एक पात्र कर्ण श्री कृष्ण से कभी प्रश्न पूछता है मेरा क्या दोष है, मेरा जन्म हुआ और जन्म ते ही मां ने दूर कर दिया, मेरा क्या दोष पूछता है। गुरु के पास गया, गुरु ने मना कर दिया, मेरा क्या दोष पूछता है। परशुराम के पास गया और जब उन्हें मेरी सत्यता का पता चला कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, शाप दे दिया, मेरा क्या दोष। कर्ण पूछता है कि वो जो ब्राह्मण जिसके द्वारा मुझे फिर शाप मिला, मेरा क्या दोष पूछता है। द्रौपदी स्वयंवर में मैं अपमानित हुआ, मेरा क्या दोष पूछता है। दुर्योधन ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या फिर भी मैं उसके पक्ष में युद्ध ना करूं पूछता है। कुंती ने भी मुझे अपना सत्य तब बताया जब उसे अपने बेटों को बचाना था, मेरा क्या दोष है इन सब में, आखिर मैं ही क्यों फंसा सब तरफ से। मेरे साथ ही भाग्य ने ऐसा खेल क्यों खेला। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मेरा जन्म हुआ मैं जेल में था और जन्म से ही मां बाप से मुझे अलग कर दिया गया, मैं छोटा सा बालक था और तब से ही आक्रमण चालू हो गए, मेरा क्या दोष। श्री कृष्ण कहता है कि तुम्हें तुम्हारे युद्ध कौशल के लिए प्रशंसा की गई हमेशा, मुझे तो युद्ध कौशल भी प्राप्त नहीं था, मेरा तो बचपन गाय खेत गांव में गुजरा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बचपन से ही कलंक लगने चालू हुए, सभी की समस्याओं का एकमात्र मैं ही कारण, ऐसा मुझे बताया गया। वो कहता है कि ना तो मेरे पास कोई आर्मी कोई सेना और तुम्हारे पास तो सेना थी, मैं किसी जगह का राजा नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो मथुरा छोड़कर भागना पड़ा जरासंध की वजह से। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे शिक्षा भी मिली जो बहुत देरी से मिली आश्रम में। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि दुर्योधन जीत गया तो सारा श्रेय युद्ध का तुम्हें मिलता, परंतु इस ओर यदि धर्मराज जीत भी जाता है तो भी युद्ध में जो भी हानि हुई लोगों ने मुझे ही उसका कारण बताया। कृष्ण को अवतार के रूप में माना गया है और वो एक ऐसा पात्र है जो निरंतर साक्षी है। वो एक ऐसा पात्र है पूरे महाभारत में जहां सब और हलचल है, सब हलचल में है, पर वो एक मात्र ऐसा है जो हलचल में नहीं है। उसे निरंतर पता है वो कौन है, बचपन से ही पता है वो कौन है। कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारी शादी उसके साथ हुई जिससे तुम प्रेम करते थे, परंतु मैं तो उससे शादी कर ही नहीं पाया जिससे मैं प्रेम करता था। दूसरों को मुझ पर थोपा गया। अवतार को निरंतर याद है वो किस दिया आया है। अवतार को अपना लक्ष्य कभी भूलता नहीं है और अवतार मोह रहित है। इतना समय दिखाया गोकुल में रहा, पर वहां से जब चला गया वापस फिर कभी भी लौट कर नहीं आया। अवतार दिखाया है, एकमात्र अवतार है जिसे 16 कला संपूर्ण कहा गया है। राम को भी अवतार माना है परंतु 14 कला संपूर्ण, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। और अवतार जो कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, लीला चरित्र कहा जाता है। उसका सब कुछ मधुर गाया हुआ है, चरितम मधुरम, चरितम मधुरम वेणु मधुरा, सब कुछ मधुर मधुर मधुर। बहुत बड़ा गीत है, मधुराष्टकम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और उसे कभी भी दुखी नहीं दिखाया गया है, अवतार कभी भी दुखी नहीं है। चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई भी मर रहा है, बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मनुरंग निरंतर अपनी स्थिति में स्थित है, साक्षी है, मोह रहित है और उसका लक्ष्य उसके सामने है और निरंतर एक आनंद मगन अवस्था में है। उसे बताया जो कुछ बाहर हो रहा है सब खेल चल रहा है, इसके लिए कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो योगेश्वर है, योगी है। बाबा ने आज कहा कि तुम्हारे अंदर एक साज बजता रहे, कौन सा, खुशी का। जैसे श्वास आता है और जाता है उसी तरह तुम्हारी खुशी निरंतर है। रुक जाना अर्थात मृत्यु, श्वास का रुक जाना अर्थात मृत्यु। उसी तरह तुम्हारी जो खुशी है वो भी कैसी है, निरंतर है, सतत है। परंतु क्या ब्राह्मण निरंतर खुश है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिन्होंने सब कुछ जान लिया, ऐसा कोई राज नहीं है सृष्टि का जो उन्होंने नहीं जाना। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं दुख है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी की चर्चा करेंगे। आज से क्या चालू हो रहा है? नवरात्रि, नवरात्रि 10 दिन। भक्त बहुत उत्सव मनाते हैं। दिवाली की तैयारी भी आज से चालू। आज पहला दिन शैल रात्रि। तो मुरली से हम ऐसी 9 बातें निकालेंगे, पर वो 9 नहीं होगी, ज्यादा होगी। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, और अगर समय मिला तो 9 से 9। सबसे पहली बात, एक पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ है? एक अपने को रथ समझ, रथ में पुरुष समझने का पुरुषार्थ। यही एकमात्र पुरुषार्थ है, यही सहज पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ सबको करना है। और यही फर्स्ट चैप्टर है एंड द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है। तो बाबा ने कहा बस ये एक ही पुरुषार्थ है, अपने आप को समझो कि ये क्या है, रथ है। और मैं आत्मा कौन हूं? रथी हूं, पुरुष हूं। आपको एक काम दे रहे हैं, आत्मा और शरीर, इसकी कितनी तुलनाएं की जा सकती है? कितनी की जा सकती है? कम से कम 50 निकालनी है। जैसे कि गाड़ी और ड्राइवर, ये एक उदाहरण। जैसे कि जैसे कि मोती और सीप, जैसे कि दिया बाती, जैसे कि पिंजड़ा पंछी, जैसे कि कुटिया तपस्वी, जैसे कि रथ और रथवान, जैसे कि ये काम होमवर्क है। ये होमवर्क करना है। एक तरफ लिखना है आत्मा, दूसरी तरफ लिखना है शरीर, क्या और क्या। मॉडर्न उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। चिंतन का विषय है ये, चिंतन योग में बहुत काम आएगा। तो एक ही पुरुषार्थ है, कौन सा? ये शरीर रथ है और मैं पुरुष। भारत में 6 दर्शन है, षडशास्त्र। उन 6 दर्शनों में एक है सांख्य, जो कहता है कि ये सारा संसार 2 चीजों का खेल है, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति ये शरीर है, आत्मा पुरुष है, सब इसका खेल चल रहा है। तो ये सबसे पहली बात, एक पुरुषार्थ। ये एक ही पुरुषार्थ करते रहना है। फिर उसके बाद में दो बातें। ये पुरुषार्थ अगर करते रहे तो 2 चीजें मिलेगी, मौज और दूसरा सुख। 21 जन्मों के लिए मौज और सुख। बाबा ने कहा संगम युग कौन सा युग है? मौजों का युग है, मूंझने का युग नहीं है। अगर संगम युग में मूंझते हैं, अर्थात संगम युग में नहीं है, पैर कलयुग में चला गया है। मूंझना, कंफ्यूज हो जाना, डिसीजन ना लेना जीवन में, निर्णय ना कर पाना, अनिर्णय की अवस्था, टू बी और नॉट टू बी, क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इतने बजे उठूं या इतने बजे उठूं, ये खाऊं या वो खाऊं, क्लास में जाऊं या नहीं जाऊं, जल्दी सो जाऊं या लेट सोऊं, फोन पर बातें करते रहूं या स्टॉप करूं, सुबह से रात तक निर्णय ही निर्णय। अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है निर्णय की शक्ति। तो मौजों का युग है, झूमने का युग है, गाने का युग है, मौज बनाने का युग है, रूहानी मौज का युग है। सूफियों में एक कहानी सुनाई जाती है जीसस क्राइस्ट के बारे में। क्रिश्चियन तो इस कहानी को नहीं मानते हैं, पर सूफियों ने भी ईसा के लिए अपनी कहानियां गढ़ी है। वो कहते हैं कि ईसा जीसस क्राइस्ट एक बार कहीं से गुजर रहा होता है, देखता है एक गांव में लोग बहुत दुखी है, उदास है। वो पूछता है क्यों इतनी उदासी, क्यों इतने दुखी हो तुम सब लोग। वो सारे कहते हैं हम इसलिए दुखी है क्योंकि हम इस नरक से निकलना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी है। कोई मार्ग, कोई मसीहा, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई सेवियर, कोई तारक, कोई तारनहार आ जाए जो हमको इस दुख से निजात दिलाए, मुक्त कराए। जीसस क्राइस्ट उनको देखता है, कहता है अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ता है। दूसरे गांव में पहुंचता है, वहां पर भी लोग बहुत दुखी है, उदास है, भयभीत है। वो कहता है इस एंजाइटी का, इस भय का, इस दुख का कारण क्या है। वो कहता है हम दुखी हैं, हम इसलिए, वो सब लोग कहते हैं क्योंकि हम स्वर्ग में कैसे जाए इसके लिए चिंतित है, स्वर्ग में हम नहीं जा पा रहे इसलिए दुखी है। वो कहता है अच्छा ठीक है, और वहां से भी निकल जाता है। तीसरे गांव में पहुंचता है, देखता है यहां के सब लोग झूम रहे, गा रहे, नाच रहे हैं। वो उनसे पूछता है तुम लोग क्यों नाचते हो, क्यों गाते हो, क्यों खुशियां मनाते हो, क्यों ये उत्सव है यहां पर। वो सब कहते हैं क्योंकि हम भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। वो पूछता है उनको तुमको कुछ चाहिए नहीं। वो कहता है हमको इतना कुछ दे चुका है वो कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, और जो कुछ दिया उसने उसमें में हम तृप्त है, संतुष्ट है, इसलिए हम झूम रहे, गा रहे। थैंकफुलनेस, अहोभाव, धन्यवाद का भाव। और कहते हैं सूफी संत कि जीसस उन्हीं के बीच में रुक गया और उनसे कहता है कि तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। उनके बीच में नहीं, वो इंगित कर रहा है उन धर्म अवलंबियों को जो धर्म का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुक्ति चाहते हैं, या कुछ लोग धर्म का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाना चाहते हैं बस। पर ये एक ग्रुप था लोगों का जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो केवल झूम रहे, वो केवल गा रहे हैं, धन्यवाद का भाव प्रकट कर रहे, और वो कहता है मैं तुम लोगों के बीच में रहूंगा। तो संगम युग अर्थात मूंझने का युग नहीं। मूंझने वाले तो बहुत है संसार में, उनको मूंझने दो। बाबा ने कहा मौज में रहने वाले तुम केवल थोड़े लोग हो, और मौज में केवल हम ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता संसार में, क्योंकि संसार में मौज है ही नहीं। जिसे वो मौज कहते हैं वो तो विकारों की दलदल है, उसमें मौज है ही नहीं, मृग मरीचिका है। रूहानी मौज, अलौकिक मौज, वास्तविक मौज, द रियल ट्रुथ, द रियल हैप्पीनेस यहां है। तो यदि जीवन में दुख आ रहा है तो समझ लेना एक पाव कलयुग में है, अब तक जन्म हुआ नहीं है, अब तक शूद्र कुमार या शूद्र कुमारी है, अभी तक मुंझे हुए है, कंफ्यूजन है, निर्णय नहीं कर पा रहे जीवन का, अभी तक अमृत वेला आत्मा उस आनंद में नहीं डूब रही है, और निर्विकारिता की तरफ हर दिन और आगे नहीं बढ़ रही है, अर्थात मुंझी हुई है, दुखी है, उदास है, देहभान में है, दर्द में है, पीड़ा में है, विकारों में है, कुकर्म में है, विकर्म में है, पाप में है, पश्चाताप में है। किसी मुरली में बाबा ने कहा है पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत पश्चाताप कर लिया। तो सबसे पहली बात एक से एक अर्थात एक ही पुरुषार्थ है, कौन सा? मैं आत्मा हूं। और इसी को अलग अलग ढंग से अलग अलग रीति से सारे दिन भर अभ्यास करना है, इसकी रूहानी ड्रिल बनानी है, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। जो शरीर से जितना डिटैच है वो उतना पावरफुल है, जो शरीर में जितना लिप्त है उतना वो कम शक्तिशाली है। शरीर से अलग हो जाना और बार बार अलग होना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और सबसे ज्यादा मार्क्स केवल इसी के है। मुरलियों में आया है अपने शरीर से चुरपुर ना हो, कुछ दिन पहले मुरलियों में था, कभी कहा सुन हो जाओ, कभी कहा डेड साइलेंस, कभी कहा सन्नाटा, कभी कहा जैसे कि गुम हो जाओ, कभी कहा इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे इस दुनिया से तुम गायब हो, अंडरग्राउंड चले जाओ। कितने शब्द है, अंडरग्राउंड, गुम, गायब, सुन, चुरपुर नहीं, सन्नाटा, डेड साइलेंस। तुम अपने ही शरीर को भूले हुए रहो तब कहीं दूसरे भी तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाएंगे, दूसरे तुम्हारी ओर आकर्षित कर रहे, शायद तुम स्वयं अपनी ओर आकर्षित हो। अपने शरीर से ही गायब हो जाओ तो दुनिया से गायब हो जाओगे। शरीर से वैराग अर्थात संसार से वैराग, क्योंकि सबसे ज्यादा खींचने वाला क्या है? ये देह। तो दूसरी बात, अगर ये पुरुषार्थ करो तो 21 जन्मों के लिए क्या मिलेगा? मौज और सुख। और केवल वहां के लिए नहीं, यहां भी मौज, यहां भी सुख प्राप्त होगी। ये पुरुषार्थ करना है। उसके बाद में तीन से तीन बातें, तीन सौगात दी है इस मुरली में बाबा ने। कौन कौन सी? पहली सौगात खुशी का सांस, हर श्वास में खुशी का सांस, म्यूजिक ऑफ हैप्पीनेस। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस संसार का विश्लेषण निरीक्षण किया जाए तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सुख का अकाल है, क्योंकि चरित्र का अकाल पड़ा है, पवित्रता है ही नहीं, किल्लत है पवित्रता की। तो सबसे बड़ी सौगात बाबा ने जो दी है वो कौन सी है? खुशी का साज। दूसरी सौगात दी है बोल। कौन से बोल? तुम कौन हो? नैनों के नूर, नूरे रतन हो, इसलिए बाप के नैनों में समाये हुए हो, इसीलिए बाप के नैनों में समाये हुए हो, बिंदु रूप में समाये हुए हो। हम वो आत्माएं हैं जो भगवान के नूरे रतन है, भगवान की आंखों में समाये हुए हैं। तीसरी सौगात साथ और हाथ। हाथ कौन सा? आशीर्वाद का। और साथ कौन सा? सहयोग का। निरंतर उसका सहयोग प्राप्त है चाहे कोई भी परिस्थिति हो। दादियों से मुलाकात में बाबा ने बहुत गहरी बातें कही है। बिना बच्चों के बाप भी नहीं रह सकता, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम उससे बात करें और वो रिस्पॉन्ड ना करे और उसे हमारे मन की, हमारे दिल की हर बात पता है, हर इमोशन पता है। तो ये तीन सौगातें थी, खुशी, समान श्रेष्ठ समान नूरे रतन, और तीसरा हम कौन है? वो आत्माएं हैं जिनका हाथ भगवान के हाथ में है और जिनको हर कदम में भगवान का साथ प्राप्त है। हम वो आत्माएं हैं जो भगवान के साथ चलती है। भक्ति मार्ग में एक किताब है, They Lived With God, कुछ ऐसे भक्तों का वर्णन है जो अपने गुरु के साथ रहे और जिन गुरु को संसार अवतार या भगवान मानता है। They Lived With God। यदि हमारी जीवन कहानी लिखी जाए तो उसमें क्या लिखा जाएगा? ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ भगवान रहता था, ये वो आत्माएं थी जिनको भगवान सुबह उठाता था, ये वो आत्माएं थी संसार में, ऐसी भी आत्माएं थी लोग दूसरों को सुनाएंगे, क्योंकि उस समय भगवान है नहीं, ये समय वो था, तो वो सुनाएंगे कि ऐसी कुछ आत्माएं थी कि जिनके साथ साथ भगवान चलता था, जो उनको उठाता था, उनको सिखाता था, उनको वरदान देता था, उनसे बात करता था। और वो लोग कहेंगे हम भी ऐसा कुछ करें जो इन्होंने किया था, ताकि हमारे साथ भी भगवान ऐसा सब करे जो उनके साथ उसने किया था। जैसे किसी गांव में एक साधु आ जाए और कहे कि मैं अभी अभी हिमालय पर्वत पर भगवान के दर्शन करके आया हूं, बचपन से साधना कर रहा था, आज दर्शन हुए, आप तुम्हारे गांव में आया हूं, तो क्या करेंगे उसके साथ? हाथी पर बिठाएंगे उसको और उसको रथ यात्रा पालकी सब कुछ करेंगे उसका? क्या कुछ नहीं करेंगे उसका, जश्न मनाएंगे कि इतनी महान आत्मा आई है जिसने भगवान को देखा है, अभी अभी साक्षात कर करके आया है, और दुनिया को अब पता चल जाए कि यही है वो, यही वो माता है भोली भाली अनपढ़ जिसने भगवान का दर्शन किया है, क्या करेंगे उसका? मंदिर में जाके बिठा देंगे। अगर लोगों को पता चल जाए नवरात्रि में जिन देवियों की हम पूजा कर रहे हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो बहने हैं वही है, तो क्या करेंगे? उधर से इधर आ जाएंगे सब। तो तीसरी बात तीन सौगात, फिर चौथी, चौथी में चार बातें, चार यादगार है अब का। जो कर्म हमने किए वो क्या बन जाएंगे? चरित्र। जो बोल हमने बोले वो क्या बन जाएंगे? शास्त्र। जो स्मृति स्वरूप हम रहे वो क्या बन जाएगा? सिमरन। और चौथा, जो शुभ भावना और शुभ कामना हमारी है, जो संकल्प है, वो उधर क्या बन जाएगा? दुआ। ये चार बातें। तो जो हम बोलेंगे वो भक्ति मार्ग में क्या बनेगा? शास्त्र बन जाएंगे। जो हम करेंगे वो भक्ति मार्ग में क्या बन जाएगा? चरित्र, लीला। लोग कथाएं करेंगे, किताबों में हमारा नाम होगा, इनके जीवन की एक कहानी, जो सेवाएं हमने की वो उसको चरित्र के रूप में गायन करेंगे। जैसे श्री राम का दिखाते हैं, वो जो कुछ कर रहा है लीला कर रहा है। तुलसीदास ने लिखा है कि छोटा सा राम विश्वामित्र के आश्रम में है, वशिष्ठ के आश्रम में है, और वहां जाकर क्या कर रहा है? शास्त्र पढ़ रहा है। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी ते प्रभु पढ़ी यह कौतुक भारी। वो कहता है कि कितना कौतुक है ये, जिसके श्वास है वेद वो वेद पढ़ रहा है, कैसी लीला कर रहा है। तो अवतार जो होते हैं वो जो कुछ करते हैं उसको क्या कहा जाता है? लीला। चरित्र गायन किया जाता है उसका। तो हम जो कुछ कर्म यहां करेंगे वो भक्ति मार्ग में क्या बनेंगे? चरित्र बनेंगे। जो हम बोलेंगे यहां पर वो क्या बनेंगे? शास्त्र बनेंगे सारे। किसी बार कभी बाबा ने कहा था, जो तुम डायरिया लिखते हो रोज मुरली पॉइंट्स, बाबा ने सब जला दिया था यहां आते समय, कराची सिंध हैदराबाद, उधर से जब इधर आए माउंट में, कहा था तुम्हारे पास जो कुछ अब तक लिखा है सब जला दो, सब नष्ट कर दिया गया था, या दबा दो द्वापर में खोदेंगे और उससे शास्त्र बनेंगे। तुम्हारी हैंडराइटिंग देख देख कर, बाप एक है, निराकार है, कुछ कुछ शब्द ले लेंगे, प्रेम का सागर है और उससे शास्त्र बैठ बनाएंगे, तो जो हम बोलेंगे वो क्या बन जाएंगे? विधवाक्य बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, विधान बन जाएंगे। और जो हमारी स्मृति स्वरूप स्थिति है वो क्या हो जाएगा? सिमरन, सिमिर सिमिर सुख पाए, माला सिमरन करेंगे। नाम सिमरन करेंगे और नाम में खो जाएंगे, मगन हो जाएंगे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, दिन रात वो खुमारी चढ़ी रहेगी। और चौथी बात, जो हमारी अब शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं वो क्या हो जाएगी? दुआ, दुआ बनेगी। इस्लाम में दुआ करते हैं खुदा से, ए खुदा, ए परवरदिगार, तू बख्शने वाला है, तू रहम करने वाला है, गुनाहों को माफ कर, गलतियों की तलाफी दे। बहुत दुआएं करते हैं और सच्चे दिल से दुआएं करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं दुआ करते करते। और कहा जाता है सच्ची दुआ खुदा कबूल करता है, कुछ भी मांगा जाए उससे सच्चे दिल से तो वो पूरी होती है। तो वो किसका असर है? हमारी शुभ भावना है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी आत्माएं भगवान से मिल ले, तो ये चौथी बात। उसके बाद में पांच, पांच अर्थात शिवरात्रि के पांच नाम। पहला, बच्चों की जयंती सो बाप की जयंती। बाबा ने कहा ये एकमात्र ऐसा है कि जिसमें बाप और बच्चा एक साथ जन्म ले रहा है। जिस दिन शिव बाबा जो अजन्मा है वो आया, उसी दिन जो जन्मदिन उसका है उसी दिन ब्रह्मा का भी जन्म हुआ, और जिस दिन ब्रह्मा का जन्म हुआ उस दिन सभी ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ। दूसरा नाम ये अलौकिक क्या है? जयंती है, ये वंडरफुल जयंती है, ये अवतरण जयंती है। और पांचवा अलौकिक बर्थडे। ऐसे पांच नाम गिनाए हैं मुरली में। अलौकिक बर्थडे है इसलिए बाबा ने तीन गिफ्ट दिए। ये अलौकिक जयंती है, ये अवतरण जयंती है, वंडरफुल जयंती है। उसके बाद में छह बातें, छह वरदान दिए हैं मुरली में। ये मुरली रात तक चलती रही। कब तक? कितने बजे बाबा गए? साढ़े तीन बजे तक अमृत वेला हो गया, रात भर चल रहा होगा। बहुत सारी चीजें जो हुई वो तो उसमें है ही नहीं। कितनी पार्टियों से मिले होंगे, कितनों से बातें की होगी, एक एक को कितना समय दिया होगा। वो दिन कैसे थे? विदाई और बाबा ने झंडा लहराया। वहां पे छह वरदान है। सदा अविनाशी भवा, सदा सदा अविनाशी भवा, सदा समान भवा, सदा समीप भव, सदा विश्व कल्याणकारी भव, सदा रहम दिल भव, और सदा सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाले भव। वरदान है ये। कितना अच्छा अभ्यास है कि सुबह आंख खुलते ही, अभी बिस्तर से उठे ही नहीं है, और सीधा अनुभव करना कि बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। अविनाशी भव, अविनाशी भव अर्थात मर नहीं जाना, अमर रहना, शूद्र कुमार या शूद्र कुमारी नहीं बन जाना, एक पाव एक नखून भी इस कलयुग में ना चला जाए, जरा भी खेच जरा भी आकर्षण ना हो संसार का, ऐसी पवित्रता की शक्तिशाली स्थिति। समान भव, जैसे मैं हूं वैसे तुम। तीन दिन पहले मुरली में था साकार, जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, जो संस्कार मुझ में है वो तुम में भी हो। समीप भव, मैं उसके बहुत नजदीक हूं, परमात्म सामीप्य का अनुभव। रहम दिल भव, जैसे उसने हम पर रहम किया है हमें सब पर रहम करना है, चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो। विश्व कल्याणकारी भव, किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करना है, किसी एक स्थान का कल्याण नहीं करना है, किसी एक सेवा केंद्र, किसी एक जिला, कोई एक राज्य नहीं, कोई एक देश नहीं, परंतु माय इंटरेस्ट्स आर इंटरनेशनल नॉट इंडियन जस्ट, सकल विश्व का कल्याण। और ये कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट संडे की मुरली, मनसा सेवा। एक मुरली चली दिव्य बुद्धि पर, फिर मुरली चली दिव्य नेत्र पर, आज की मुरली है दिव्य जीवन पर। दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र और दिव्य जीवन, तो ये छह वरदान। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। उसके बाद में सात से सात बातें, ज्योतिष की सात बातें यहां बाबा ने बताई। कौन सी ज्योतिष की सात बातें हैं? तिथि, 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 तिथि के बाद तारीख, वेला, दिशा, दशा, नाम, राशि। बाबा ने कहा जो बाप की तिथि है वो तुम्हारी तिथि, जो बाप की राशि है वो तुम्हारी राशि, जो उसका नाम वही तुम्हारा नाम। जो वेला वो आया, उसी वेला तुम भी जन्म लिए। तो ज्योतिष विद्या के बारे में बाबा ने कहा सात, और अभी मुख्य मुरली पर आते हैं आठ। आठ समान मुरली से, मुरली में कौन आया है आज? भोलानाथ। क्यों कहते हैं उसको भोलानाथ? सब पर दया, तो बाकी विष्णु भी करता है और वो ब्रह्मा वो बाकी भी करते हैं, देवी देवता है। शिव को ही भोलानाथ क्यों कहा है भक्ति मार्ग में? भंडारा भरपूर करता है और क्या बोला है, वो लेता कुछ नहीं, अवडर दानी है, सबको देता ही रहता है। और वो भोला क्यों है? खराब लेकर अच्छा देता है, नीलकंठ गाया है उसका गायन। और वो भोलानाथ क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कौन है, असुर भी है वो, भस्मासुर, तपस्या की, वरदान दे दिया, और वरदान में भस्मासुर को लगा मैं ऐसा वरदान मांगू कि इस पर ही प्रयोग करता हूं, जिसके सिर पर हाथ रख दू वो भस्म हो जाए, और देखा इर्द गिर्द कोई नहीं था, हिमालय था, इसी पर प्रयोग करता हूं ताकि ये मर जाए तो मैं ही भगवान बन जाऊं, और उसी के पीछे पड़ गया। किसी को भी वरदान दे देता है, ये नहीं देखता है ये कितना पापी है। और वो अमीरों का भगवान नहीं, वो विष्णु का है, लॉर्ड ऑफ द रिच, ये तो लॉर्ड ऑफ द पुअर है, गरीब जो है उनका ये भगवान है, बिना सोचे समझे दे देता है। और किसी का याद नहीं रखता है, भोलानाथ है, किसने क्या क्या किया सब भूला रहता है उसको, ऐसा ये है, भोला है वो। तो बाबा ने आज कहा, आज कौन किसको देख रहा है? बाप भोला भंडारी है, बाप भोला नाथ है, और आठ समान दिए शुरुआत में। सबसे पहला किसको देख रहे? सदा स्नेही बच्चों को देख रहे हैं बाप। तो हम सब कौन आत्माएं हैं? मुरली की शुरुआत ही यहां से। आज बाबा की भी अपनी स्टाइल है, आज भोलानाथ, भोला भंडारी, बाप किसको देख रहा है? सबसे पहला समान सदा स्नेही बच्चों को देख रहा है, दूसरा समान सदा सहज योगी बच्चों को देख रहा है, जो सहज योगी है, खेचातान नहीं है। अभी सेवा पूरी हुई, अभी हम योग करते, मतलब अभी तक योग नहीं था, निरंतर ही योगी, सहज योगी, और वास्तविक योग तो चालू ही तब होता है जब बाबा के कमरे से बाहर निकलते हैं। हमारा योग कोई ऐसा योग नहीं है। उस दिन था ना, अरे जादूगर आया है, आंखें बंद थोड़ी ना करनी होती है, आंखें खोल कर देखो उसको, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। कैसे देखो? आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, सामने कौन बैठा है, क्या दे रहा है। वो पवित्रता का सागर उस ब्रह्मातन में बैठा है, पवित्रता का सूर्य बैठा है और उन दो आंखों से झांक रहा है, उसकी किरणें वहां से निकल रही है। कैसे रह पाओगे अपवित्र? कैसे मन में ला पाओगे कोई तृष्णा, इच्छा, वासना, देहवान, देह अभिमान, देह के भोग? ऐसी पवित्रता है उसकी, वो सागर है। तो सहज योगी, सहज करना है जीवन को, क्योंकि जो सहज नहीं है वो लंबा समय नहीं चलेगा, चाहे वो योग हो या डाइट या लाइफस्टाइल, कुछ भी सहज जो नहीं है वो लंबा समय नहीं टिक सकता। इसके लिए किसी भी पुरुषार्थ को सहज बनाने का अभ्यास करना है, ताकि लंबा समय चले। कि हमारा ये पुरुषार्थ एक दिन का नहीं है, दो दिन का नहीं है, तीन दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, एक मास का नहीं है, छह मास का नहीं है, एक साल का नहीं है, लंबे समय का पुरुषार्थ है। ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, लंबे समय का पुरुषार्थ है। ऐसा कुछ करना है जो लंबा समय से चले। इसके लिए बहुत रिवॉल्यूशन नहीं करना है, इवोल्यूशन करना है। रिवॉल्यूशन अर्थात एकदम क्रांति, कल से सीधा 2 बजे और परसों सीधा 8 बजे, फिर कल सीधा 2 बजे और दिन भर भयंकर नींद, सेवाओं में नींद, बैठे बैठे नींद, मुरली में नींद, क्लास में नींद, सेवा में नींद, अमृत वेला महाभयंकर नींद। ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है। 5 मिनट भी अगर 3:30 बजे उठते हैं और 5 मिनट भी पीछे जाना है तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। 5 मिनट भी पीछे जाने के लिए बहुत तपस्या लगती है, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं है वो, हर दिन के लिए, हमेशा के लिए। और केवल मधुबन में है तब तक के लिए नहीं, जब घर गए तब भी वही पुरुषार्थ चले। बहुत सेवाएं है, 12 बज गए सेवा करते करते रात को, तब भी अपने आप उठने का समय वही हो। इसके लिए थोड़ा अपने ऊपर दया करना है, किसी को देखा और हमने भी वैसा ही चालू कर दिया तो गिर पड़ेंगे। जैसे डाइट कोई ऐसा करता है, हम भी ऐसा करेंगे, नहीं होगा। पहला सदा स्नेही, दूसरा सदा सहज योगी, तीसरा सहयोगी आत्माएं। हम कौन है? सहयोगी। उसके हर कार्य में सहयोग देना है। इसके लिए उल्टा नहीं होना चाहिए कि सहयोग के बजाय कुछ और ही कर दिया जो हमसे डिससर्विस हो जाए। भोजन लिया, थोड़ा सा खाया और बाकी छोड़ दिया। चाय ली, आधी ग्लास पिया और आधा छोड़ दिया। फल मिले बहुत सारे, कमरे में ही रखे रहे, किसी को दिए ही नहीं, सड़ गए। रूम से निकले, फैन चालू, नीचे शांतिवन में माताएं आती है, जाते समय चाबी लेके चली जाती है लॉक लगाकर, तोड़ना पड़ता है बाद में। आई थी पुण्य कमाने, पाप करके चली गई। मधुवन में आने के बाद जैसा कमरा लिया था, जाते समय उसको वैसा ही छोड़ के जाना, एक सिलवट ना हो उस बिस्तर पर। जैसा बाथरूम था छोड़ते समय वैसा ही छोड़ के जाना। सके तो छोटा डस्टबिन बड़े डस्टबिन में डाल के जाना, जो चीजें उसमें डालिए केले और छिलके सड़ने के लिए वहां नहीं रख देना। तीसरा क्या बताया, सहयोग देना है। चौथा खजानों के मालिक, यह अलौकिक नशा हो यहां पर मालिक हो, बालक सो मालिक, वहां तो मालिक है ही यहां पर भी मालिक है, सर्व खजानों के मालिक क्या बना हूं, स्वयं की चेकिंग, स्वयं को देखना, सारी खुशी और सारी पवित्रता अंदर है या खजाना माया चोरी करके ले जाती है दिन भर में। उसके बाद में पांचवा, खुश नसीब, कौन सी आत्मा हूं, बाप किसको देख रहे, ऐसी खुश नसीब आत्माओं को देख रहे। छठवा, संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे। सातवा, अवतार, ये मुख्य पॉइंट है मुरली की, मैं कौन हूं, अवतार हूं। अवतार अर्थात कौन सी श्रेष्ठ स्मृति, मैं दिव्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा हूं, ये अवतार है, मैं अवतार हूं, मैं इस तन में अवतरित हुई हूं, मेरा अवतार का कार्य, जैसे कार्य पूरा हो जाएगा मैं चला जाऊंगा, मुझे यहां किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे कृष्ण की बात कही थी शुरुआत में, वो आया गोकुल में रहा, संदेश आया निकल गया, बाद में कभी पूछा नहीं, कभी गया नहीं उधर, नष्ट मोह, वहां का पार्ट पूरा हुआ, अब इधर, अब तक इस स्थान पर थे, अब तक इस सेंटर पर थे, वहां का पार्ट पूरा हुआ, अब इधर, पहले वहां थे अब यहां है, अब उधर की बातें इधर याद नहीं करना, पहले लौकिक घर में थे अब सेवा केंद्र में है, फुल स्टॉप, अब क्या बात करनी है उनसे, मर चुके हैं सब, फुल स्टॉप। अवतार अर्थात प्रेजेंट, अवतार को पुराने से कोई लेना देना नहीं, अवतार अर्थात नष्ट मोह, अवतार अर्थात जो अवतरित हुआ है, तुम भी बाप के साथ अवतरित हुए हो, किस लिए, विश्व परिवर्तन के लिए। तो सातवां समान, मैं कौन हूं, अवतार हूं। आठवां, आठवीं बात, मैं कौन हूं, डबल डबल लाइट, डबल हीरो, कौन कौन सा हीरो, जीवन भी हीरे तुल्य और हीरो पार्टधारी, संसार की सभी आत्माएं मुझे देख रही है, ये समझना है। जैसे हम स्टेज पर है, स्टेज पर कौन कौन लोग होते हैं, स्टेज पर कौन कौन होते हैं, एक तो चीफ गेस्ट बैठे होते हैं, एक एंकर होता है, एक गीत गाने वाला आ जाता है बीच में, एक डांस करने वाली छोटी कन्या आ जाती है बीच में, और माइक लगाने वाला आता है, और स्वागत करने वाला आता है, फूल देने वाला आता है, तिलक देने वाला आता है, और जो भी जब स्टेज पे आता है क्या ध्यान रखता है, मेरा सब ठीक हो, क्योंकि एक मिनट के लिए एंट्री है, परंतु फिर भी कैमरा सामने है, देखने वाले हजारों लोग हैं, या ऐसे ही उठ के आ जाता है कैमरा के सामने, बहुत ध्यान रखता है। स्टेज पर आना मतलब चलो कैमरा ना हो, इतनी सारी आंखें घूर घूर कर देख रही है, कोई ये ना पूछे तुम्हारे बाल ठीक नहीं थे, एक मिनट के लिए भी कोई स्टेज पर आता है तो तैयारी करके आता है। छोटी कन्या सेंटरों पर डांस करती है, उसको कहो कि सुबह तुमने जो डांस किया ना वही शाम को करना, वो कहती है ना मैं दूसरा करूंगी, क्योंकि लोग तो वही होंगे ना, उसको कहो लोग तो वही नहीं, लोग दूसरे हैं, पर कहेगी स्टेज पर बैठे वाले तो वही होंगे ना, उसको दूसरा चाहिए, ड्रेस दूसरा चाहिए, गीत दूसरा चाहिए, और वो दूसरा डांस करेगी, कितना ध्यान है उसको। तो हम सब कहां है, विश्व की स्टेज पर है, सारी दुनिया हमको देख रही है। सोचो ब्राह्मण परिवार बैठा हुआ है, पूरा डायमंड हॉल सजा हुआ है, और सारे विश्व की आत्माएं देख रही है, और हम जो जो सोच रहे हैं वो डायमंड हॉल की दो बड़ी बड़ी स्क्रीन है ना, वहां दिखाई दे रहा है, और सब लोग देख रहे हैं, तो क्या सोचेंगे? यह हमारे जीवन का हर दृश्य वहां दिखाई दे रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सारा विश्व, सारी ब्राह्मण आत्माएं। तो ऐसी आठ बातें, नवमी में नौ बातें हैं जो अगली बार लेंगे। तो फिर से रिवाइज करते हैं आज की मुरली। सबसे पहला, एक में एक पुरुषार्थ। कौन सा एक पुरुषार्थ है? स्वयं को रथ समझना, रथ में बैठी हुई मैं कौन हूं? पुरुष हूं, आत्मा। दूसरा, दो से दो बातें मिलेगी, दो फल प्राप्ति होगी। कौन से वो फल है? दो प्रारब्ध होगी 21 जन्मों के लिए, एक खुशी और एक मौज। तो संगम युग अर्थात मौजों का युग, रूहानी मौज का युग, मूंझने का युग नहीं है। हम उधर से इधर आ गए हैं, अब उधर नहीं जाना है वापस। ये समझना मेरा वो पुराना जन्म था, ये नया जन्म है, नई बातें हो या भाग्यवान बाप के साथ तुम्हारा पार्ट है। तीन में तीन सौगातें, पहली सौगात खुशी की सास का सास, दूसरी सौगात नूरे रतन, तीसरी सौगात सात और हाथ। चार में चार बातें, कौन कौन सी? हमारे बोल शास्त्र, हमारे कर्म चरित्र, हमारे हमारी स्मृति सिमरन, हमारे शुभ भावना शुभकामनाएं दुआएं। उसके बाद में पांच नाम शिवरात्रि के, अलौकिक बर्थडे, अवतरण, अलौकिक अवतरण, उसके बाद में अवतरण जयंती, वंडरफुल जयंती, अलौकिक बर्थडे, बाप की जयंती, सो बच्चों की जयंती। उसके बाद में छह बातें, किसकी? जो छह वरदान, अविनाशी भव, समान भव, संपन्न भव, समीप भव, और उसके बाद में विश्व कल्याणकारी, रहम दिल और शुभ भावना शुभकामना। अमृत वेले कल अभ्यास करना है, आंखें उठते ही खुलते ही बाबा ने हाथ रख दिया और वरदान दे दिया। उसके बाद में सात बातें ज्योतिष की, तिथि सेम, तारीख सेम, तिथि दिन, दिन बोला है बाबा ने, तारीख नहीं बोला है, तिथि दिन वेला दिशा दशा नाम राशि सब कुछ सेम। उसके बाद में आठ बातें, आठ समान। मुरली की शुरुआत, सबसे पहले तुम कौन आत्माएं हो? स्नेही आत्माएं, सहजयोगी आत्माएं, सहयोगी आत्माएं, खजानों के मालिक आत्माओं, बालक सो मालिक आत्माएं, खुश नसीब आत्माएं, श्रेष्ठ संपन्न आत्माएं, मैं अवतार हूं, और लास्ट मैं डबल हीरो भट्टारी हूं। तो ऐसी ये पूरी मुरली थी, उसमें से कुछ बातें दादियों से मुलाकात और जो गेस्ट थे उनसे मुलाकात, इनको छोड़ दिया, ये दो मुला के नौ बातें होगी, ताकि नौ दिन नौ रातें नौ रात्रि। अच्छा, ऐसे ऐसे तो बोल दिया बहुत सारा, भाग्यवान आत्माओं को, खुश नसीब आत्माओं को, और जितने सारे सम्मान दिए अवतार आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।